अब आपको परमात्मा कभी परमेश्वर की किन किन हंसों ने प्राप्ति हुई और बताते हैं। एक दादू साहेब हुए हैं, वो उनके नाम से एक बहुत अच्छा पंथ भी चला हुआ है। दादू साहेब जी जब 7 वर्ष के थे, अपने गली में थोड़ा सा गांव से बाहर खेल रहे थे। रास्ते में वहां बच्चे की तरह खेल रहे थे, और भी बच्चे वहां पर विद्यमान थे। पूर्ण परमात्मा कबीर से, कबीर परमेश्वर वही जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आया, जिंदा महात्मा। जैसा कि आपको दिन में बताया था, सुबह के सत्संग में बताया था कि जिंदा महात्मा का रूप बना कैसा होता है। एक काला टोप होता है ऊपर सिर पे, ऐसे गोल गोल ऊंचा चोटा होता उसका ऐसे, और काला ही ऊपर एक ओवरकोट टाइप सिंह वही कपड़ा होता जो कमीज के कमीज के स्थान पर पहनते हैं, और एक कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का, और दाढ़ी बड़ी होती है, सिर के बाल थोड़े से छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो उसको जिंदा महात्मा कहते हैं, वो जिंदा महात्मा होते हैं। उस और प्रौढ़ यानी वृद्ध अवस्था में बड़ी सी आयु का रूप धारण करके प्रभु वहां दादू साहेब जी को मिले। संत दादू साहेब जी छोटे से थे, 7-8 वर्ष के, वो खेल रहे थे बच्चों में बाहर गांव से थोड़ी सी दूरी पर। परमात्मा वहां बैठ के चर्चा चली, परमात्मा के विषय में जानकारी दी, बेटा भगवान की भक्ति किया करो, ऐसे वैसे। तब दादू जी ने कहा, प्रभु आप मुझे अपना लोक दिखाइए, आप कहां से आए हो। जैसे गरीबदास जी ने प्रश्न किया था, तो दादू कबीर साहब ने उसे कहा, बेटा ठीक है, मैं आपको अपना लोक दिखाता हूं जहां से मैं आया हूं। उसमें दादू जी ने देखा, परमात्मा ने दादू जी को एक जल पिलाया, प्रथम मंत्र दिया, लोटे से जल पिलाया। इस प्रक्रिया को वहां उपस्थित कुछ भक्त यानी दूसरे बच्चे देख रहे थे। उसके बाद दादू जी अचेत हो गए, उनकी श्वास चल रही थी लेकिन चेतनता नहीं थी। उस जीव को निकाल करके परमात्मा सतलोक में ले गए, ऊपर सारी व्यवस्था दिखाई। उधर से उस बच्चे को अचेत देखकर गांव के वो बच्चे भागकर घर में घर आए, उनके माता पिता को बताया। गांव के बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए कि एक साधु ने ना जाने कैसा मंत्रित जल पिला दिया, जिससे ये दादू बच्चा अचेत हो गया। झाड़े वगैरह जंतर मौलवी बुला करके झाड़े जंतर लगवाए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। वेदों को दिखाया, कोई राहत नहीं मिली। 3 दिन और 3 रात तक दादू जी अचेत पड़े रहे। जब तीसरे दिन परमात्मा ने उस आत्मा को वापस भेज दिया, और ऊपर के सब लोगों को दिखा करके सारी व्यवस्था से परिचित करा करके नीचे भेज दिया। अब दादू साहेब जी उसके उपरांत उस कबीर परमेश्वर के गुण गाने लगे। कैसे? जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ताकहू कहतन आवे पारे। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावे सोए। पूर्ण जगत को, पूरे संसार को कहते हैं भक्ति, वही दृढ़ाते हैं, वही तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, यथार्थ भक्ति मार्ग वही बताते हैं। ठेका पूरा होवे जब सब कोय तजे शरीर, दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीर। दादू साहब जी कह रहे हैं कि जब ये शरीर आपका समाप्त होगा, यानी समय आएगा शरीर त्यागना पड़ेगा, जब शरीर छोड़कर तुम जाओगे, तो जब पूर्ण परमात्मा कबीर जी की जो साधना करते हैं उनके निकट काल नहीं आएगा। ठेका पूरा होवे जब सब कोय तज शरीर, दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। कहते हैं जब व्यक्ति की आयु समाप्त हो जाती है तो यम के दूत घेर देते हैं, लेकिन मैंने परमात्मा की को याद किया, जो कबीर जी को याद करते हैं उनको वो आकर के स्वयं ही बचाते हैं। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले है कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, भृंगी सत्य कबीर ने कीना आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, वारो नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ, दन दन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन परताप ते ये भाग्य सुनत आवाज। क्या बता रहे हैं दादू साहब जी कि ये काल भी कोई छोटा मोटा, कोई कम ताकतवर नहीं है। जैसे हाथी कितना ताकतवर होता है, हाथी तो समझो यो ज्योति निरंजन काल है, और केहरी केहरी बब्बर शेर जिसको कहते हैं वो कबीर परमेश्वर जानो। हाथी चाहे झुंड का झुंड जा रहा हो और शेर जब दहाड़ मार देता है तो हाथी लीद कर देता है भय के कारण, इतना भयभीत हो जाता है। तो क्या कहते हैं कि छोटी वस्तु तो काल भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसों की भी उसके सामने कुछ नहीं बसाती। गरीबदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा का आसन खिसका जब सुनी काल की गाज, जब काल दहाड़ा ऊपर से ब्रह्मा का भी जो दिल धड़कन लग गया, आसन डगमगा गया। और वो काल फिर कबीर साहब के सामने ऐसे होता है जैसे हाथी होता है शेर के सामने। केरी नाम कबीरी का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर की, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लाए, अस्ति के असवार को हो स्वान काल नहीं खाए। दादू जी ने कितनी प्यारी उपमा दी है परमात्मा की समर्थता की। कहते हैं कि जो पुण्यात्मा सच्चे दिल से परमात्मा कबीर जी को पूर्ण प्रभु मानकर अगर कभी उसने एक बार भी भगवान को याद किया हुआ है पूर्ण संत से न उपदेश लेकर के, उसके निकट भी ये काल नहीं आ सकता। कैसे? इतना सेफ हो जाता है, इतना काल की पहुंच से दूर हो जाता, जैसे हाथी पर बैठने के उपरांत, हाथी पर असवार हो जाने के उपरांत कुत्ते उस हाथी पर सवार व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा सकते, काट नहीं सकते, उनकी इतनी दूर हो जाता है। वो क्या बता रहे हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के असवार को समान काल नहीं खाए। अब तुलनात्मक तरीके से आप जो परमात्मा की भक्ति सतगुरु कबीर जी की भक्ति करते हैं, आप तो समझो हाथी पर बैठ गए, और ये काल को जानो अब कुत्ते लेवल में है, ये तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। हाँ, तुम लालच में या कोई किसी कारण से हाथी ते नीचे उतर गए तो फिर जो तो भाई तैयार बैठा है बक्कल तार देगा। तो हमने इस परमात्मा के की शरण से दूर नहीं होना, इसके नाम को नहीं छोड़ना, ये उद्देश्य ये है कहने का। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के सवारे को काल स्वान काल नहीं खाए। सुमरण किया सुमरत नाम कबीर का, कटे काल की पीड़ी, दादू दिन दिन ऊंचे होवे फिर परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं वो काल वज्र की चोटे। अब कहते हैं कबीर परमात्मा की जो ओट ले लेते हैं उनको काल की चोट, काल के वज्र तीर, कहते हैं पग पग पर यो तक तक मारे काल अचानक बाणा, बाण माने तीर, अचानक तीर मार देता है, परिवार के परिवार नष्ट कर देता है। हमारे भक्तात्मा पुण्यात्माएं जिनके साथ प्रभु है वो कैसी कैसी घटनाएं बताते हैं। हमारे तीन भक्त सवार होकर के महम से आ रहे थे और मारुति कार में, उसमें लाइट डिम थी, आगे एक ट्राला भरा खड़ा खराब होया खड़ा था, ट्राला बुड्ढा ट्राला होता है, रात्रि के समय सामने से लाइट ज्यादा होने से ड्राइवर भगत को वो ट्राला ना दिखा और फुल स्पीड में गाड़ी उस ट्राले के नीचे ठोक दी। उस गाड़ी का नामो निशान मिट गया, मतलब कति कंडम होगी, और उस बच्चे का थोड़ी सी खरोंच, कति यहां से इन्हों टाल रखी है परमात्मा, इन्हों कति गले के ऊपर कहे परमेश्वर, और इतने बड़े बड़े वो उनके पीछे एंगल लग रहे होते हैं, उन एंगल के बीच के न्यू गया, और एंगल न्यू लाग गया तो गर्दन का पता नहीं लाग गया। उन तीनों भक्तों का कोई खरोंच नहीं आन दी मालिक ने, ऐसे ऐसे ना जाने कितने प्रमाण हैं, गिनती नहीं। कि कोई भक्त बताते हैं कि मोटर, एक भक्त बताता है कि आगे से मोटरसाइकिल और बीच में दो, एक ट्रैक्टर और एक कार के बीच में मोटरसाइकिल पर आ गए, मोटरसाइकिल का तो कति कंडम हो गया और परमात्मा के दास के खरोंच भी नहीं। देखने वाले सभी ने कहे, बीमे वाले इंश्योरेंस वाले भी कहने लगे, भी इस मोटरसाइकिल वाला आदमी तो खत्म हो गया होगा, तो उनको थोड़ी सी चोट तो अवश्य, थोड़ी सी चोट आई नाम मात्र सी, तो ऐसे ऐसे उदाहरण कितनी कहानी है, कितने प्रमाण है प्रभु के। तो यहां दादू साहब भी यही कहते हैं, दादू नाम कबीर की जय कोई ले वे ओटे, ओट माने जो उसकी शरण दे, उसकी आड़ में बैठ जा, उसके चरणों में आ जाता है, तिनको कबू लागे नहीं वो काल वज्र की चोटे। वज्र, वज्र माने बहुत भयंकर मिसाइल टाइप के हथियार को वज्र बोलते हैं, तो इतना जबरदस्त वो ठोका है तो उसकी भी चोट नहीं लगती। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत्य कबीर। क्या बताते हैं कि और संत सब कूप हैं। अब जैसे कोई भी साधु है संत है जिसकी कहीं ना कहीं गांव किसी में शहर गांव में कोई व्याख्या है, वो मिठा नहीं बताई संत जी ने कि वो भी संत हैं, उनमें भी कुछ शक्ति सिद्धि है और थी, लेकिन पूर्ण नहीं थी। जैसे आपको बताया है साधारण से उदाहरणार्थ कि जैसे एक तहसीलदार भी साहब होता है और एसडीएम भी साहब होता है, डीसी भी साहब कहलाता है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है और मंत्री भी साहब होता है। मुख्यमंत्री को भी साहब कहते हैं लेकिन और प्रधानमंत्री जी को भी साहब बोलते हैं, राष्ट्रपति जी को भी साहब कहते हैं, लेकिन इन साहबों में अंतर है। इसी प्रकार यहां दादू जी ने अपना एक अलग से सिंपल लैंग्वेज में उदाहरण दिया है, और संत सब कूपे हैं। अन्य संत जो तुम जिनकी महिमा सुनते हैं उनको समझो कुएं की तरह, जितना पानी है वो थोड़ा सा काम चला सकते हैं। और केते झरीता नीर, कुछ झरना टाइप में है, थोड़ा बहुत जल टपकता रहता है। दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। दादू जी की जो महिमा की तुलना करते हैं कि दादू साहेब परमात्मा कबीर जी को समझो दरिया हैं, यानी इतने समर्थ हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी शक्ति रखते हैं, ब्रह्म में भी शक्ति है, पर ब्रह्म में भी शक्ति है, लेकिन पूर्ण परमात्मा इतना शक्तिशाली है, इतना अंतर है। जैसे एक तो कोई छोटी मोटी नहर होती है, कैनाल होती है, जो गर्मियों में उनमें जल नहीं मिलता है, और दरिया वो होती है जिसमें कितना ही गर्मी पड़ो लेकिन उसका जल कभी समाप्त नहीं होता। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा की शक्ति की महिमा जो है दादू साहब बता रहे हैं। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, कि इस जन्म में टंटा मिट जाएगा, झंझट मिट जाएगा, तेरी जन्म मृत्यु का संकट कट जाएगा। श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर, ओए होए, इसी जन्म में सब मिटे तेरी जन्म मरण की पीर, और श्वास उश्वास में सोमर ले वो दादू नाम कबीर। अर्थात जो कबीर जी यथार्थ भक्ति का संदेश मार यानी भक्ति मंत्र देते हैं उसको श्वास उश्वास से स्मरण करना होता है। तो इसी जन्म में तेरा झंझट मिट जाएगा, जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगी। कोई सरगुण में रीज रहा कोई सरगुण ठहराए, दादू गत कबीर की हमसे कही न जाए। कोई तो कहते हैं भगवान सरगुण है, कोई कहता नहीं निर्गुण है, कहते हैं उसकी महिमा तो वही बता सकता है, परमात्मा की महिमा को परमात्मा ही बता सकता है। दादू नाम कबीर का सुनके कांपे काले, नाम भरोसे जो चल नर चले बाका न होवे बाल। ओए होए, दादू नाम कबीर का सुनके कांपे काल, ये ज्योति निरंजन भी कांपने लग जाता है परमात्मा की महिमा को सुनकर, उसके नाम के उसका जिक्र चलते ही इसकी भी धड़कन बढ़ जाती है दिल की। और कहते हैं परमात्मा के सच्चे नाम की के सहारे यानी सच्चा विश्वास करके चलता है तो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, दादू साहेब जी कह रहे हैं। यही गरीबदास साहेब जी कहते हैं, दादू नाम कबीर का सुनके कांपे काले, नाम भरोसे जो नर चले हो न बाका बाले, जिन मो को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दद दूसरा कोई नहीं वो कबीर सृजनहार। दादू जी कहते हैं और कोई दूसरा भगवान नहीं है, केवल कबीर ही सर्व सबका सृजनहार कुल मालिक है, सारी सृष्टि का रचनहार है, और उसी ने मुझको निज नाम दिया, यथार्थ नाम दिया, खास मंत्र दिया जो वास्तविक मंत्र है। जिन मो को निज नाम दिया, जिस परमात्मा ने मुझे वास्तविक मंत्र भक्ति का दिया, सोए सतगुरु हमार। और दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। अब क्या बताया है, अब इसी प्रकार गरीबदास साहेब जी ने भी परमात्मा की महिमा बताई है। क्या बताया है कि गरीबदास जी ने बताया कि जिस समय मुझे कबीर परमेश्वर यहां से लेकर चले ऊपर गए, तो धर्मराज जो यहां का लेखा जोखा करने वाला है, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी बोलने की हिम्मत नहीं है, उनका भी अकाउंट वही रखता है। उस धर्मराज के दरबार में जाकर के कबीर परमात्मा ने, जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी के ऑफिस में जाकर उसके डांट लगाता है और वो खड़ा होकर जी सर करता है और अपनी चेयर छोड़ देता है, इस प्रकार कबीर परमात्मा ने गरीबदास साहेब जी को अपनी समर्थता का प्रमाण देने के लिए ये दिखाया कि बेटा देख ले ये मेरे सामने किस प्रकार हो जाते हैं, ये मेरी समर्थता क्या है। धर्म राय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू चंपिए मत कजाक। क्या बताया है कि धर्मराज दरबार में दी कबीर तलाक, और क्या कहा कि मेरे भूले चुके हंस को तू चंपिए मत कजाक। धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू चंपिए मत पकड़ना मत कजाक। क्या बताते हैं कि कबीर परमात्मा ने धर्मराज के दरबार में जाकर कहा कि कान खोल कर सुन ले ओ धर्मराज, कि मेरा भूला चुका हंस बीते जो पार ना हो पावे, और मान ले उसने रास्ता बदल भी लिया और गुरुद्रोही ना हुआ, तो उसको भी तू पकड़ना मत, मेरे पास भेज देना, उसका हिसाब भी नहीं करना। और तो धर्मराज कहता है कि परमात्मा जो आपके भक्त हैं और उन्होंने नाम ले लिया आपसे और फिर उन्होंने नाम त्याग दिया, तो उनका क्या करूं। अब वो तो वैसे ही कर्म जैसे आम व्यक्ति कर रहे हैं वैसा ही कर्म कर रहे हैं, उनके विषय में क्या बताते हैं कि कर्मों से तीरत हैं वो मुख से कहें कबीर, उनको तो पकड़ूंगा मैं जड़ों तो के जंजीर। कि जिन्होंने नाम टूट गया और भक्ति कर नहीं पा रहे, तो उनको तो मैं अवश्य पकड़ूंगा परमात्मा, वह वैसे ही नाम कबीर कबीर तो कर रहे हैं लेकिन वो जुड़े नहीं उससे। तो कहते हैं कि वो भोली आत्मा है, भूले चुके उनको ज्ञान नहीं, इस कारण से उनके नाम खंड हो गया होगा, तो उसको पार तो वो नहीं हो पाओगे लेकिन उनको तो उनको भी नहीं पकड़ना। क्या करना कि बोले कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहू नेस, जिन हमारी दो ही दी सो करो हमारे पेश। जिसने नो कह दिया ना कि मैं तो परमात्मा का भगत था, मेरे से गलती होगी, वैसे टूट गया मेरा नाम है। और वहां भी कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटा हूं, तो इतने दयालु परमात्मा है। कहते हैं जिसने मेरा नाम लिया है वो सच्चे संत से जुड़ा हुआ करा है और फिर विचलित हो गया है, उसको भी तो मत पकड़ना, मेरे पास लाना, हमारे पेश कर देना। तो यहां परमात्मा का एक और राजदूत भवन जैसे होता है, यहां एक लोक है सतगुरु का, कबीर परमेश्वर का। वो ऐसे विचलित हंसों को वहां रख लेते हैं, और फिर जब भक्ति का युग आता है, भक्ति का समय ऐसे आता है, अब उनको फटाफट जन्म दे देंगे। ये छोटे छोटे बच्चे आन लाग रहे परमात्मा की आत्मा, ये तैसे आपके घर जो जन्म हो रहा है, आपके और संतान के जो संतान होगी, उन बच्चों को तो सीधा परमात्मा कबीर कबीर घर में जय जयकार होती पाओगी, उनको पता ही नहीं होगा कि और भी कोई पूजा होती है। ये हंस अब इनकी पेंडिंग भक्ति रह गई थी, अब आने लग रहे हैं, और देखना अब इनकी कितनी अच्छी किस्मत होगी, कैसे ये कितनी अच्छी किस्मत के बच्चे आपके घरों में आएंगे। इनकी पिछली कमाई इतनी अच्छी होगी इनके पास कि इनके अपने आप काम सुरेंगे, इनकी कार होंगी, कोठियां होंगी, अच्छे बड़े बड़े अफसर बन जाएंगे और भक्ति करेंगे, दोनों काम होंगे। परमात्मा अपने बच्चों के लिए ना जाने कितने के कर देगा अपनी आत्माओं के लिए। फिर कहता धर्मराज के, बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तेरे हंस को पकड़ू नहीं मन द्वाही लाख करोड़े। हाथ जोड़ के कहते हैं वो, ये काल का जो नुमाइंदा है प्रतिनिधि धर्मराज, यहाँ का न्यायाधीश, ये 21 ब्रह्मांड का एक ब्रह्मांड का न्यायाधीश धर्मराज, कहते हाथ जोड़ कहने बोला कि तेरे हंस ने पकड़ो नहीं मन दो ही लाख करोड़। ये परमात्मा लाख दुआई है, मैं तेरे हंस को कति दुखी नहीं करूंगा। इस प्रकार पुण्यात्मा परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा की भक्ति से जब महिमा से आप परिचित हो जाओगे, तब रुचि बनेगी उस परमेश्वर की साधना करने में। अब आपको पूर्ण परमात्मा के दो गवाह बता दिए, एक तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जिन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा, सतलोक देखा, आकर के अपनी आंखों देखी महिमा परमात्मा की, वाणी का वर्णन किया। ऐसे ही आदरणीय गरीब दादू साहिब जी ने परमात्मा को देखा, आंखों देखा, सतलोक में देखा, बताया कि वो कबीर है, उसको सह शरीर है, और उसी की भक्ति से जीव को यहां भी सुख और मोक्ष भी पूर्ण प्राप्त होगा। अब तीसरा गवाह और बताते हैं, कौन है, कौन तथा कैसा है कुल का मालिक, इसको प्रमाणित करने के लिए आपको तीसरा गवाह बताते हैं। जिसमें परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी सह शरीर यहां लीला करने के लिए कलयुग में आए हुए थे, उसी दौरान एक मलुक नाम के मलुक राम नाम के एक बहुत बड़े किसान थे, जागीरदार थे, वो उसी गांव में एक बार परमात्मा कबीर बंदी छोड़ दी किसी भगत के घर पे सत्संग कर रहे थे। अब जिस घर में संत आते हैं, सदगुरु आते हैं, तो उस घर में अच्छी बढ़िया पकवान होता है, बढ़िया अच्छी तरह का जो है ना भोजन बनाया जाता है, खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं। उसमें परमात्मा उस मलुक दास जी के गांव में 3-4 दिन रुके। गांव के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है निंदा करने की, उन्होंने जाकर के मलुक दास चौधरी साहब को जाके बता दिया कि चौधरी साहब अपने गांव में एक ऐसा व्यक्ति आया है जो अपने आप को साधु कहता है, और वो गरीब आदमियों को लूट रहा है, प्रतिदिन है, अलवे बने, खीर बना बने हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन बने लग रहे हैं और लूट रहा आपकी नगरी को। अब मुलुकदास जी ने देखा, अपनी आंखों देखना चाहा तो उसने देखा कि एक घर में एक दिन अलवा बन रहा था, चौधरी साहब का आना हुआ, अलवे में पात डालनी हुई और उठे उसमें मैं एक दूर तक तो देख कर चला गया चौधरी साहब, भाई ये तो कति काचे काटे हैं, मौज कर रहा है तो अपने खूब खावा है हलवे और मस्ती कर रहा है। दूसरे दिन फिर देखा दूसरे के घर में उसी प्रकार कढ़ाई चढ़ रही। अब दादू उस पे मुलुक राम जी पर नहीं डटा गया, रुका नहीं गया, आकर कहने लगा रहे हो मस्टंडे तो क्यों दुनिया को बहका रहा है, करके क्यों नहीं खाता, तेरे हाथ दिए हैं भगवान ने, मेहनत कर मजदूरी कर, क्यों इस दुनिया को गुमराह कर रहा है, ये है वो है। परमात्मा ने स्वाभाविक कह दिया कि चौधरी साहब मुझे तो भगवान बिना किए ही दे रहा है, तो मुझे काम करने की आवश्यकता क्या है। मुलुकदास जी बोले, मुलुक राम चौधरी बोले, क्यों बहकावे है भाई, यो भगवान मुझे क्यों नहीं देता बिना काम किए। परमात्मा ने बोले कि तुझे विश्वास नहीं है परमात्मा पे, इसलिए तुझे नहीं देता, विश्वास कर, क्यों ना देते रहते बिना करे, मां के पेट में किसने पालन किया था। एक कथा याद आ जाती है, एक भक्त, एक माई का बालक ना होया करते, उसने किसी संत से प्रार्थना की कि महात्मा जी मेरे बच्चे ना होते। उसने कहा बेटी तेरे बच्चे तो हो जाएंगे पर पहला बच्चा लड़का होगा वो मुझे दान कर देना, क्योंकि उन संतों को चिंता रहती थी कि बुढ़ापे में तेरी सेवा कौन करेगा। माई ने प्रतिज्ञा कर ली कि ठीक है महात्मा जी, पहला पुत्र मैं आपके चढ़ा दूंगी। उसने पाल पोस के एक दो साल का वर्ष का जो हो जाए साल छह महीने दो साल का, तो संत ने कहा कि उसके बाद तेरा दूसरी संतान हो ले ना, लड़का हो ले तब चढ़ाइए तुम। बोला जी ठीक है। तो उसका दूसरा लड़का भी हुआ, भी लड़का हुआ, एक और हो गया और फिर लड़की होगी। अब उसने वो लड़का उस संत को डोनेट कर दिया। अब संत ने सोचा कि ये बच्चा है, इसको मैं ऐसे ढंग से रखूं इसको संसारी ज्ञान ना हो, कदे ये भाग जाते तो ब्याह भी करवा ले और संसार की हवा ना लाग जाए इसके। उसने उस भगत को, उस बच्चे को आश्रम में रखा, स्वयं ही बाहर से भिक्षा मांग कर लाता था, उसको आश्रम से बाहर नहीं जाने देता था। और आश्रम में भी वृद्ध यानी बड़ी एज की स्त्रियों को, बड़े बुजुर्गों यानी व्यक्तियों को ही वहां, ऐसा ज्ञान था उस टाइम के बुढ़े होकर भगवान का नाम बजा करें तो वृद्ध बूढ़ी लोग स्त्रियां या वृद्ध व्यक्ति ही वहां आश्रम में इक्का दुक्का दो चार कभी चले जाते थे। भाव यह कहने का कि उसने संसार में बाहर नहीं निकला था। एक दिन महात्मा जी के छाती में सीने में यहां और इतना बड़ा फोड़ा हो गया और वो बाढ़ तोड़ टाइप हो गया, बहुत भयंकर पीड़ा हो, महात्मा जी सारी रात रोवे, दिन में बैठा रहे मर गया रहे मर गया रहे, लेकिन फिर भी भिक्षा मांग के वो ही लावे बेसिक वो। फिर कुछ दिनों में उसने अपनी कोई जंतर मंत्र वो दवाई बूटी की, पत्ते वत्ते बांध करके वो ठीक कर लिया, वो स्वस्थ हो गया बिल्कुल, वो फोड़ा फूट गया और फिर धीरे धीरे जख्म भर गया। वो बच्चा 15-16 वर्ष का हो गया। एक दिन महात्मा जी बहुत ज्यादा बीमार हो गए, साथ में वृद्ध अवस्था भी थी। ज्यादा बीमार होने से अब साधु ने कहा बेटा जा भिक्षा मांग लिया और ऐसा करना कि सामने तू जाएगा, वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव था कि तू सीधा इस रास्ते जाएगा, वो प्रथम ही घर है उसी घर से भिक्षा लेकर वापस आ जाना, दूसरे में मत जाना। गुरुजी के आदेश अनुसार वो लड़का एक थैला उठा करके पहुंच गया उस घर के सामने और कहा माई भिक्षा देना। तो वहां से एक लड़की, युवा लड़की यानी छोटी ही लड़की जो बाहर आई, मतलब वो लड़की भिक्षा लिए आ रही थी, उस साधु ने, उस भक्त ने, उस बच्चे ने देखा कि उस बहन के, उस बेटी के सीने पर दो फोड़े नजर आए उसको। तो वो कहने लगा, हे बहन, हे बेटी, ना कहने लगा, माई की बेटी, तुझे पीड़ा नहीं होती तेरे सीने पर कितने मोटे मोटे फोड़े हो गए हैं, आश्रम में आ जाना, तेरे फोड़े ठीक कर देंगे हमारे गुरुजी। अब वह लड़की लागी गाल देन, उसने ढेर, तने शर्म नहीं आती, तेरे माँ बाण को ना तो अपनी बहन के फोड़े फोड़वा ले, वह बुरी तरह गाला मंडगी। अब उसको पता नहीं ये क्या कह रही है, क्योंकि उसके मन में पाप नहीं था। लड़की इस बात को समझ गई, जान बूझ कर बकवाद करे मेरे संग में, दोना बदतमीजी कर रहा। उधर से ये गाली गलोच की आवाज अंदर उस माई ने सुन ली। वह माई बाहर आई, कहने लगी, बेटी क्या बात है, क्यों गुस्से हो रही है? वह कहने लगी, पूछ ले इस पर, यो बाबा जी पे कितना बेउद्दी नजर रखता है, ये नौका है, ये करवा ले, हैं? अपनी बहन के फोड़े फुड़वा ले, अपनी माँ के फुड़वा ले, और फिर मंडगी गाली देने। तब वो उसकी माँ को पता था कि दोनों बहन भाई हैं ये, तो तब वो कहने लगी, बाबा जी, महाराज जी, क्यों, क्या बात है? वो कहने लगे, माई, मैंने नहीं कुछ कहा इस बहन को, मैंने तो ये बताया है कि बहन के ये फोड़े हो रहे हैं सीने पर, मेरे गुरुजी का फोड़ा हो गया था एक के, सारी रात रोया करते थे, और मैं भी रोता था उनके पास बैठ के, बहुत पीड़ा होती है, और गुरुजी के पास एक ऐसी दवाई है, वो दो तीन दिन लगाने से ठीक होगी थी, तो मैं तो इस बहन को ये कह रहा था, बहन आप वहां दवाई ले लेना। तब वो बहुत ऐसी, वो जानगी कि इस बालक ने पहली बार आज ये समाज संसार देखा है, ये तो महात्मा जिसको बिल्कुल कति गुफा में रखा करते। उसने बताया, महात्मा जी, ये फोड़े नहीं है इस बहन के, इस बेटी के, ये तो दूधी है इसको। तो वो कहने लगा, माई, फिर दूधी का क्या होगा कि इसको, ये जब युवा हो, इसको हम इसकी शादी कराएंगे, शादी के बाद इसको संतान उत्पन्न होगी, तो उस संतान को ये दूध पिलाया करेगी अपनी दूधी ते। तो बोला, वो कहने लगे उस साधु, वो भक्त छोटा सा बालक 15-16 साल का जो साधु था संत, कहने लगे, माई, इस बेटी का विवाह कब होगा, बहन का? माई बोली, अभी तो 1-2 वर्ष में इसका ब्याह करेंगे, और फिर 1-2 साल में बेटा महात्मा जी इसका बालक होंगे। अच्छा, अब 2 साल के बाद तो आप शादी करोगे, 1-2 वर्ष के बाद इसको बच्चे होंगे। तो उसने अपने दृष्टिकोण से सोचा, जो ज्ञान सुना करते थे महात्मा से, सोचा कि हे परमात्मा, आप इतने हमारी एडवांस अरेंजमेंट करते हो, कब इस बहन का ब्याह होगा, कब इसको संतान होगी, उससे पहले परमात्मा ने आने वाले बच्चे के लिए पहले ही मां के सतन लगा दिए, क्या ते दूध पीवेगा और छक जाएगा। अरे तेरे की, जब वो इतना हमारा ध्यान रखता है, और फिर हम मांगते फिरते हैं, वह जोड़ी जो थैला ले रखा था उसने थोड़ा बहुत आटा गलवा रखा था, उड़े पटक दिया ठाक, आज के बाद भाई मांगण नहीं आऊंगा मैं, जब भगवान ने इतनी चिंता अपने बच्चों की तो वो क्यों ना वहां देगा। वो जो एक झोली बोलते हैं साधु संता की, उसमें आटा गलवा लिया कर, 3-4 पार्ट से बना रखे होते हैं, किसी में आटा, किसी में चावल, किसी में खांड, नो पूरा गलवा लिया करते, वह वही पटकाया उसने, रागया हाथ लटकाता। अब गुरु जी बुखार में तो दुखी हो रहे थे, कहने लगे, अरे बेटा, भिक्षा नहीं लाया मांग के? ना गुरु जी, के बात होगी? क्यों महाराज जी, भगवान तो हमारी इतना ध्यान रखता है, इतना एडवांस अरेंजमेंट करता है कि ऐसे मैंने एक बेटी बहन देखी, उसको जो है ना परमात्मा ने अभी से सतन लगा रखे हैं, और 3-4 वर्ष के बाद उसका संतान होगी, उस संतान के दूध पीने के लिए इन एडवांस परमात्मा ने अरेंजमेंट कर रखे, क्या हम नहीं, रोटी नहीं देगा वो, क्या वो भगवान हमारा ध्यान नहीं करेगा? और बालक का बात फिट होगी, बैठ गया अनाड़ी होकर, अब महात्मा पर चला जाना उठा था, बीमार गणा हो गया। और महात्मा जी बोला, तू अच्छा खागड़ छुट्टा भाई है, ते अच्छा शिष्य पाला, मने मन ने भूखा मारेगा, तू भी मरेगा। अब उस महात्मा को बेशक वो भक्ति करता था, इतना विश्वास नहीं था, लेकिन वो बालक था, ज्ञान रोज सुना करता था, वो ज्ञान ही आगे अड़ गया। परमात्मा तो भाई यहां भी देगा, जब उसने जीवित रखने तो बैठ गया। और महात्मा को उठा जाना, चलो भाई देखी जाएगी। उधर से क्या रजा बख्शी परमात्मा ने, कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दर जीव का वो आप बगल हो जा। क्या किया परमात्मा ने, वहां प्रेरणा उत्पन्न की। उन्होंने एक भक्त ने सुना कि भाई महात्मा का एक बीमार हो गए, गुरु महाराज जी तब बीमार हैं, और वो भक्त जो उनका चेला है, वो बालक है, वो पता नहीं किस कारण से के कवा सुनी होगी और थैली को वहीं पटक गया, और भाई महात्मा तो भूखे होंगे, वो आप भी भूखा होगा और महात्मा जी भी भूखे होंगे। ये विचार, ये बात कई आदमियों ने, कई घरों ने सुन ली, तो सभी के मन में आई कि आज मैं महाराज जी के लिए भोजन लेकर चलते हूं। 5-6-7 घरों ने यही धारणा बनाकर रोटी बनावे और लेकर बांध के खीर भी, रोटी भी, सब्जी भी, अचार भी, और चल पड़े आश्रम की तरफ। वहां 2 घंटे के अंदर 6 व्यक्ति रोटी ले ले जा लिए और वहां लाइन लगा दी। जब वो भक्त कहने लगे, महाराज जी देखो परमात्मा ने कैसी दया कर दी, बनया बनाया आ गया, तामा फुड़वाया करते बनाया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने ये कथा उस मुलुक राम को सुनाई। मुलुक राम बोला, क्यों बात बनावे तुम, यही बात बना बना कर दुनिया को ठगते हो, मैं देखूंगा आज मुझे भोजन खिला दे, तेरे भगवान ने मान लूंगा, अगर आज मुझे परमात्मा ने भोजन करा दिया तो मैं तेरे साथ तेरा चेला बन जाऊंगा, यदि आज मुझे भोजन नहीं करा सका तेरा भगवान तो तुझे मजदूर लगाऊंगा, अपने खेत में मजदूरी करवाऊंगा। परमात्मा बोले, देखना कदे तू फिर जा, फिर अपनी बात ते, नहीं मैं नहीं फिरने वाला, बोला ठीक से जात। अब उस मुलक राम चौधरी ने सोचा कि मैं अपने खेतों में ना जा करके दूसरे गांव की दूसरी सीमा में एक जंगल में पहुंच गया, वन में, और वहां एक वृक्ष के ऊपर बैठ गया, ऊंचे से पर जाकर ऊपर चढ़कर खूब शिखर में। उसने सोचा कि यहां मुझे कौन आहार खिलाएगा, कौन रोटी लेकर आएगा मेरे लिए, और फिर बाबा जी ने बताऊंगा, देख आज मैं सारा दिन भूखा रहा। अब परमात्मा कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, गोता लाऊं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढत फेरूं अपने हीरे माणिक लाल। परमात्मा कहते हैं कि मैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, अपने पुण्य आत्माओं को ढूंढता फिरता हूं, सोशल छिद्र करके ना जाने किस कारण से उसको अपनी शरण में ले लेता हूं। क्या हुआ कि उस वहां जिस जंगल में वो जाकर वृक्ष पर छुपे थे मुलुक राम जी, वहीं आसपास उस जंगल में कुछ ये भेड़ बकरियों वाले जो होते हैं, गायें भी रखते हैं कुछ एक दो, तो उन्होंने उनका कोई त्योहार था उस दिन, उन्होंने कहा भी खीर बना लो दूध निकाल के। उन्होंने एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी कि तू यहां उसी वृक्ष के नीचे जहां ऊपर मुलुक राम छुपा बैठा था, कि यहां खीर बना ले और हम भी इन पशुओं को आगे चराते हैं चारा, फिर बाद में हम यहीं आ जाएंगे, तो तब तक खाना बनाकर तैयार रखना। तो ठीक है, उनका ऐसा ही सलाह बन गई। वो तो एक थोड़ी दूर ले गए अपनी बकरी और भेड़ों को, गायों को, और वो एक व्यक्ति उसी वृक्ष के नीचे चूल्हा बना के मिट्टी का और लकड़ी तोड़ कर जंगलते हैं, और सारा सामान वो साथ रखते हैं, दूध वहां से निकाल कर गाय का और खीर बननी रख दी। जब खीर बन चुकी, उसी समय उसी रास्ते से कुछ डाकू आ गए, घोड़ों पर सवार होकर के डाकू लोग आ गए, उन भेड़ बकरी चराने वालों को पता होता है कि ये दूर से जो धूल उठती आ रही है ये डाकू आ रही है। वो व्यक्ति तो भाग्यवान छोड़ के बुनती खीर को अपने साथियों के पास कहने लगा भाग लो डाकू आ गए। वो तो और दूर चले गए। उधर से डाकुओं ने आकर के उसी वृक्ष के नीचे गहरी छाया देख करके घोड़े रोक दिए। उन्हीं में से एक ने कहा सरदार जी हे सरदार देखो कुछ पक रहा है इसमें अवश्य कोई भोजन होगा भूख लगी है क्यों ना रोटी खा ले कुछ खा पी ले। एक उसने कहा देखो उतर के क्या देखा तो उसमें खीर उबलन लग रही। अब सरदार ने कहा एक ने कहा डाकुओं में से भाई के पता कौन के मिला गया हमारे शत्रु भी तंडरे हैं बहुत गने हैं इसको किसी पशु पक्षी को खिला लो थोड़ा सा ठंडी करके फिर खाएंगे। तो उन्हीं में से एक कहने लग गया वो बनाने वाला कहीं यही छुप रहा होगा उसने क्यों ना खवा दे। इधर उधर देखा एक की दृष्टि गई कर वो चढ़ रहा ऊपर शिखर में वो चढ़ा बैठा ऊपर से वो छुप के उन्हें सोचा यो डर के बैठ गया हमारे तो ऊपर ने यो खीर बनाने वाला। उसको कहा कि नीचे आ भाई तू। वो कहने लगा नहीं आता नीचे क्यों। कहने लगा हम डाकू हैं और भी मारेंगे तेरा गोली। तुमने देखा रही तो डाकू हो भाई ने बोला आऊ हूं मारियो मतना। वो नीचे उतरा नीचे उतराया तो वो कहने लगे वो जो पतीला था जिसमें वो बर्तन था जिसमें खीर बनाई जा रही थी उसका ढक्कन था उस ढक्कन के ऊपर खीर डाल दी कि इसमें खीर डाल अच्छी सी उन्हें खीर डाल दी और ठंडी कर ली। बोला कहने लगे वो डाकू के खा। अब वो बोला मैं तो ना खाऊं। अब उनको पक्का हो गया कि ये अवश्य इसने कुछ मिलावट कर रखी है इसलिए नहीं खाता इसमें कोई जहर मिला रहा होगा दोस्तियों। कहने लगा खा। उन्होंने बोला ना खाऊं। उन्होंने जो बताया था भी तो असर तारेगा जैसे ने रोटी खा ली था। तो उनको और पक्का हो गया भाई तो निकम्मा आदमी है और अवश्य इसने को गड़बड़ कर रखी है। नु बोला खा नहीं तो तेरे गोली मारेंगे दो चार थप्पड़ मारे। वो लग गया भाई खान डरता क्या मरता क्या नहीं करता। उसने अब अच्छी खीर खाई तो बोला और खा अगाचा खिलाओ तोड़ा मरे जल्दी मरेगा डैडियो। तो उन्होंने अब वो खीर ते कति छका दिया। नुबलाई भाग आध घंटे वहां बैठाए रखा फिर नुबलाई भाग जा तू यहां से मरिया तक कोनी। फिर उन्होंने भी खीर खा ली और वो भी आ गया। अब मुल्क जब वो डाकू उसको कहने लगे ना तेरे गोली मारेंगे या तुझे जान से वो डर गया और इतना घबरा गया मन में नोक रहे हे महाराज जी आज मेरी जान बचा दे मैं आते तेरे चरणा में पड़ूंगा तेरा चेला हो जाऊंगा। अब वो डर तो परमात्मा ने सब तरह से तरीका अपनाना पड़ता है पुण्य आत्मा को शरण में लेने के लिए। एक तो वो जो बह के समय डर के समय उसने जो संकल्प किया फिर उसको पक्का हो गया कि गुरु उस महात्मा की जी वजह से आज मेरी जान बची ना इन्हें के लागे एक मिनट एक गोली मार के जाते रहते तेरा काम निमट गया था। अब वहां से सीधा भाग्या आया आते ही परमात्मा के चरणों में गिर गया फूट फूट कर रोए। परमात्मा ने कहा सुना चौधरी साहब भगवान ने तेरी सेवा पानी करी कि नहीं। ने बोला भगवान एक महाराज जी तेरा भगवान था मर मर खीर खिलावे है। कहने लगे तो मर मर खीर खिलावे है भगवान हे संत जी अब आज से ये दास तेरा चेला और आप मेरे पूज्य गुरुदेव। फिर परमात्मा ने उसको तत्व ज्ञान से परिचित कराया। फिर वही जो मुलुक चौधरी मुलुक था वो अपने आप को दास मुलुक कहता है मुलुक दास। तो क्या कहता है जयपोरे मन साहेब नाम कबीर जयपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर जपो रे मन साहेब नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत भए वो रुकी गया दरिया नीर। जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। जपो रे मन साहेब नाम कबीर। दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया, कोई गाडे कोई अग्न जरावे नेक न धरते धीरे। कोई गाडे कोई अग्न काशी तज गुरु मगहर पहुंचे दोनों दीन के पीर। काशी तज गुरु मगहर पहुंचे दोनों दीन के पीर। कोई गाडे कोई अग्न जरावे नेक न धरते धीरे। जपो रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। दास मलोक सलूक कहत है खोजो खसम कबीर। जपो रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। अब वही मलुक राम चौधरी साहब कहता रहे भगवान है यो कबीर, ये पूर्ण परमात्मा है। और इस परमात्मा ने कबीर परमेश्वर को जब ये काशी में आए हुए थे, किसी ने महिमा गाई के श्री कृष्ण जी जब बंसरी बजाते थे पशु पक्षी उनके निकट आ जाते थे, तो परमात्मा ने कहा वे एक दिन बंसरी हम भी बजा के दिखाओगे तुम्हारे को, आ जाना वहां पर ब्रजवासियों। सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए और वहां परमात्मा ने बंसुरी लेकर कबीर परमेश्वर ने बंसुरी बजाई। कहते जमुनाकार पशु पक्षी तो कहना ही क्या, वहां किस प्रकार इकट्ठे हो गए। दरिया का पानी भी उस परमात्मा की मीठी सुरीली आवाज को सुनने के लिए जाम हो गया, जैसे बर्फ हो जाया करती है। और फिर संकेत करते ही वो उसी तरह लहरा कर चल पड़ा। कहते हैं सुर नर मुनिजन सभी थक गए रुक गया दरिया नीर। तो पुण्यात्माओं जब हम परमात्मा से परिचित हो जाएंगे तभी हमारी रुचि प्रभु में बनेगी। बोलो सतगुरुदेव की जय। कर जोरू विनती करूं धरूं चरण पर शीशे, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी आर, भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पोत कपोत हूँ बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्षक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संवार। गुरु जी तुम ना बोलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाम। कबीर तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किस की शरण में जाऊं। शिव वेरंच मुनि नारदा, तीन के हृदय न समान। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतोर। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी। कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कानी। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। उस नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबो ना छूटता, फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता, कब हो न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया, सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की, सात समंदर की मसी करूं, लेखनी करूं बन राए। धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध। ओए दुखी संसार में, आगे यम के फंद। गुरु मानुष कर जानते, कर चरणा अमृत को पान। ते नर नरक जाएंगे, हे जन्म जन्म हो स्वान। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि भजें वो रह गए, गुरु भजें हम पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि के रूठते, गुरु की शरण में जावे। कहे कबीर गुरु रूठ गए, तो हरि नहीं होत सहाय। गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए। मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए।